ये आकाशवाणी दिल्ली है। अब आप नईम अख्तर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का उद्घाटन किया। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बैजयंत पांडा को चुनाव प्रभारी और अतुल गर्ग को सह प्रभारी नियुक्त किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल से पहला अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव शुरू होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC द्वारा कल से RRTS के गाजियाबाद स्टेशन पर नमो भारत पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। और CBI ने दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक इस्तेमाल का आह्वान किया है। श्री मोदी ने सुरक्षा, सम्मान और समानता की प्राथमिकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक ढांचे की स्थापना के महत्व को भी दोहराया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान इस विषय को उठाया था और वैश्विक संस्थानों से वैश्विक शासन में इसके महत्व को पहचानने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WSA 2024 का उद्घाटन किया। WSA डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा के मानक कार्यों का संचालन सम्मेलन है। इसका आयोजन हर 4 वर्ष में किया जाता है। भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में इसका आयोजन पहली बार किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दूरसंचार और उससे संबंधित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभी दुनिया का सबसे अधिक सक्रिय देश है।
आज भारत टेलीकॉम और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक है। भारत जहां 120 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स हैं, जहां 95 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, जहां दुनिया का 40% से अधिक का रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है, भारत जिसने डिजिटल कनेक्टिविटी को लास्ट माइल डिलीवरी का इफेक्टिव टूल बनाकर दिखाया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का डिजिटल विजन 4 स्तंभों, सस्ते उपकरणों, सभी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, किफायती डाटा और डिजिटल प्राथमिकता पर कार्य करता है।
साथियों, WTSA पूरी दुनिया को कंसेंसस के जरिए एम्पावर करने की बात करता है। इंडिया पूरी दुनिया को कनेक्टिविटी के जरिए सशक्त करने की बात करती है। यानी इस इवेंट में कंसेंसस और कनेक्टिविटी भी एक साथ जुड़ी है। आप जानते हैं कि आज की कॉन्फ्लिक्ट के लिए इन दोनों का होना इतना जरूरी है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपनी सफलता के अनुभवों को दुनिया के साथ साझा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत 5G का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और अब सरकार 6G प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं का नेतृत्व बढ़ाने के लिए अनेक अवसर पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नमो ड्रोन दीदी पहल ने ड्रोन के इस्तेमाल से कृषि के क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात किया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पहुंचे आगंतुकों ने आकाशवाणी से बातचीत में अपने अनुभव साझा किए हैं।
मेरा नाम राजीव है और मैं दिल्ली से अभी बिलोंग कर रहा हूँ। बाहर आए हैं, देखा इवेंट में तो काफी अच्छा लगा। हमें पता लग रहा है कि मार्केट चल क्या रहा है, क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, एक अच्छा है हमारे लिए भी। और हम थोड़ा अपडेट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाइज काफी ग्रो कर रहे हैं इंडिया, देख रहे हैं 6G के भी हम देखे हैं, भारत 6G का जैसा हमने देखा यहाँ पे, और ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए।
रमन, ये सबसे बड़ी बात है कि अब हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अडॉप्टर न रह के हम टेक्नोलॉजी लीडर बन रहे हैं। और मैं लास्ट 4 साल से IMC ज्वाइन कर रहा हूँ तो मैं एक इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ कि जहाँ पे पहले इंडियन कंपनीज एज ए कॉर्नर्स में होती थी, आज आई थिंक 350 और मोर देन 400 स्टार्टअप्स हैं जो लगा, और वो स्टार्टअप्स हैं जिनको मैंने 2 साल पहले देखा था कि मतलब सीड कैपिटल उन्होंने अरेंज की थी, बट नाउ आज के डेट में वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को नई दिल्ली में अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के समारोह में शामिल होंगे। संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ये दिवस मना रहा है। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री अभिधम्म दिवस और पाली भाषा के महत्व तथा बुद्ध धर्म की समृद्ध विरासत को संरक्षण और प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के प्रयासों पर अपने विचार साझा करेंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समारोह को विशेष रूप से संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी उपस्थित होंगे। पाली को हाल ही में 4 अन्य भाषाओं के साथ शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिलने से इस वर्ष के अभिधम्म दिवस समारोह का महत्व बढ़ गया है। अभिधम्म पर महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं मूल रूप से पाली भाषा में उपलब्ध हैं। अभिधम्म दिवस भगवान बुद्ध के 33 दिव्य प्राणियों के दिव्य क्षेत्र से संकासिया में अवतरण की याद दिलाता है। इसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में संकिसा बसंतपुर के रूप में जाना जाता है। प्रादेशिक समाचार के लिए सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद बैजयंत पांडा को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं गाजियाबाद से पार्टी के सांसद अतुल गर्ग को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने आज एक पत्र जारी कर ये जानकारी दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सांसद श्री पांडा और श्री गर्ग को बधाई दी है। श्री सचदेवा ने आशा व्यक्त की है कि दोनों वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में दिल्ली में भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में हेरफेर के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें 100% फूल प्रूफ हैं। श्री कुमार ने नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि चुनाव के दौरान मतदान में भाग लेकर लोगों ने ईवीएम को लेकर उठाए गए सवालों का समाधान कर दिया है।
वोटिंग में पार्टिसिपेट करके पब्लिक जवाब देती है सवाल का। जहां तक ईवीएम और इन सबका प्रश्न है वो 100% फुल प्रूफ है। मैं कई बार बता चुका हूं, आज अगर ये प्रश्न उठेगा तो फिर बताएंगे वहां पर।
हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है और ये दोनों बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बीच चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए एक बैठक की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा में भरोसा जताने के लिए हरियाणा के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों पर विश्वास व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बदोली ने संवाददाताओं से कहा कि नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ नेता तथा समाज के विभिन्न तबकों के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। श्री बदोली ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को पंचकुला के शालीमार मैदान में सम्पन्न होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल से संगीत नाटक अकादमी द्वारा पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। आकाशवाणी से बातचीत में संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्षा संध्या पुरेचा ने बताया कि महोत्सव के दौरान कई सत्र आयोजित किए जाएंगे जिनमें विभिन्न भारतीय नृत्य रूपों पर गहन चर्चा होगी।
यहाँ पे यूएसए, इंडोनेशिया, स्पेन, मलेशिया, नेपाल, मॉरिशियस, बांग्लादेश, किर्गिस्तान जैसे 15 से 16 लाख कंट्री से लोग आ रहे हैं। आर्टिस्ट आएंगे और उसकी नृत्य सेमिनार में आयोजन में उसकी मूल भूमि समावेशीकरण, सशक्तिकरण, स्थिरता और अर्थव्यवस्था पे चर्चा होने वाली और उसके आगे हर रोज 16 से 21 अक्टूबर को शाम को नृत्य की प्रदर्शनी होगी। विश्व के विविध देशों से आए हुए नृत्यकार अपना नृत्य प्रदर्शित करेंगे। तीसरी एक और पंखुड़ी है इस अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव की, वो है प्रदर्शनी। ये प्रदर्शनी संगीत नाटक अकादमी का 1950 से लेके आज तक का इतिहास चित्र प्रदर्शनी द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है।
21 अक्टूबर तक चलने वाले इस महोत्सव में आगंतुक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक फिरोज शाह रोड स्थित रविंद्र भवन में प्रदर्शनी में निशुल्क भ्रमण कर सकते हैं। वहीं कमानी ऑडिटोरियम में शाम 6:30 बजे से 8:30 बजे तक नृत्य का निशुल्क आनंद ले सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू ग्रैप वन को सख्ती से पालन कराने के लिए मुख्यमंत्री आतिशी ने आज सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ आज हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं। इस बैठक में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहे। बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने बताया कि शहर में धूल प्रदूषण रोकने के लिए लगभग 100 टीमें गठित की गई हैं, जो निर्माण स्थलों का दौरा करेंगी। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, नमो भारत और दिल्ली मेट्रो रेल निगम अपने निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन लगाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी विभाग सड़कों की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने शहर के लोगों से सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल, पटाखे और कूड़ा न जलाने के साथ ही प्रदूषण की सूचना ग्रीन दिल्ली ऐप पर देने की अपील की है। वहीं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान पर पहले से ही काम कर रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया है कि शहर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है। अधिकारियों को निर्देश देने के नाम पर सरकार जनता को गुमराह कर रही है। श्री सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली में सर्दी के दौरान होने वाले प्रदूषण के दो प्रमुख कारण रहते हैं, जिसमें पहला पंजाब में पराली का जलाना और दूसरा दिल्ली में निर्माण स्थलों पर उड़ने वाली धूल। श्री सचदेवा ने कहा कि सरकार के पास ठोस कार्य योजना न होने के कारण पहले पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया और बाद में ग्रैप वन लागू कर दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC द्वारा कल से RRTS के गाजियाबाद स्टेशन पर नमो भारत पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय इस मेले का आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से किया जा रहा है। NCRTC ने बताया है कि इस पुस्तक मेले में यात्रियों और स्थानीय निवासियों के लिए विभिन्न श्रेणियों की पुस्तकें उपलब्ध होंगी। इनमें लोकप्रिय आत्मकथाएं, क्लासिक और समकालीन साहित्य, फिक्शन, नॉन फिक्शन और बच्चों की पुस्तकों सहित अन्य पुस्तकें शामिल होंगी। मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक किया जा रहा है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में चल रहे सरस आजीविका मेले के तीसरे दिन आज बड़ी संख्या में आगंतुक मेले का आनंद लेने पहुंचे। इस मेले में देशभर से स्वयं सहायता समूह की 900 से अधिक दीदियां लगभग 450 स्टॉलों के माध्यम से अपने उत्पाद, शिल्प और व्यंजनों का प्रदर्शन कर रही हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की टीम ने दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों के खिलाफ CBI को शिकायत मिली थी कि एक मामले से दोषी का नाम निकालने और उसके विरुद्ध कार्रवाई न करने के एवज में आरोपियों ने रिश्वत मांगी थी। हरियाणा ओपन गोल्फ टूर्नामेंट इस महीने की 17 तारीख से 20 अक्टूबर तक हरियाणा के पंचकुला गोल्फ क्लब में आयोजित किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में वीर अहलावत, अंगद चीमा, राहिल गंगजी और उदयन माने जैसे भारत के कुछ प्रमुख पेशेवर गोल्फर भाग लेंगे। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय मौसम सामान्य रहा, हालांकि शाम के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की विश्व दूर संचार मानकीकरण सभा का उद्घाटन किया। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बैजयंत पांडा को चुनाव प्रभारी और अतुल गर्ग को सह प्रभारी नियुक्त किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल से पहला अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव शुरू होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC द्वारा कल से RRTS के गाजियाबाद स्टेशन पर नमो भारत पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। और CBI ने दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।